संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर की दृष्टि में प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, और यदि वो स्वयं को जाने पहचाने और स्वयं में ही जम जाए रम जाए, यानी वो आत्म दर्शन करे, आत्मज्ञान करे, आत्म ध्यान करे, तो पर्याय में भी परमात्मा बन सकता है, ये चर्चा चल रही है। जब ये बात हम करते हैं तो बहुत से लोग एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि आप ये भगवान बनने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आज का आदमी कितना भ्रष्ट हो गया है, खान से पान से व्यवहार से ना उसके जीवन में प्रमाणिकता रही है, ना आचरण में सदाचार रहा है, ना जीवन अहिंसक रहा है, ना शुद्ध सात्विक वृत्तियां रही हैं, तो आप सबसे पहले ये उपदेश क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जब तक जीवों में ऐसी पात्रता नहीं आएगी, तब तक वे तुम्हारी इस आत्मा फात्मा की बातें सुनने के लिए राजी भी नहीं होंगे, ये बात उनके गले में उतरेगी भी नहीं। इसलिए वो लोग हमें सलाह देते हैं कि आप जगत के सामने जो आत्मा की ऊंची बातें करने के अलावा पहले सदाचार की शिक्षा दो। इन बच्चों को विनय करना तो सिखाओ माँ बाप की, गुरुओं की, बाद में आत्मा फात्मा की बातें करना। मैं उनसे कहता हूँ, भाई साहब, ये सदाचार भी यदि किसी के जीवन में आएगा तो वो भी इन आत्मा की बातों से ही आएगा। जरा आप कल्पना कीजिए, अपने देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, और उसके पहले राजीव प्रधानमंत्री बनने के पहले वे प्लेन चलाया करते थे। जब वो प्लेन चलाया करते होंगे तब कैसे कपड़े पहनते होंगे, कैसा खान पान होगा, बाजार में खड़े खड़े चाट खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे। उनकी मम्मी ने, इंदिरा गांधी ने उन्हें बहुत समझाया होगा कि बेटा तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो, थोड़ा ख्याल तो रखो अपने अरे कोई चीज़ खानी पीनी है तो बाजार में खड़े खड़े क्यों खाते हो, घर आके ला के खा किया करे। और ये कपड़े पहनना अच्छा लगते हैं तुमको, एक कभी कभी कुर्ता पजामा भी पहन लिया करे। लेकिन माँ ने कितना ही क्यों ना समझाया हो, लेकिन उसे ने कुछ नहीं मानी। और वही व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बन गया तो समझाने को अम्मा जी तो थी नहीं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, और कुर्ता पजामा आ गया, कभी कभी गले में दुपट्टा भी आ गया, माथे पर कभी कभी टोपी भी आ गई, और बाजार में खड़े खड़े खाने की बात तो ना मालूम कहाँ रफू चक्कर हो गई। ये उनके जीवन में सदाचार कहाँ से आया, मैं आपसे पूछना चाहता, क्योंकि उनने जब ये फीलिंग किया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मेरा उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए, और सहज भाव ही उनका आचरण सुधर गया। ऐसे ही जब हम ये समझेंगे कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, हम स्वयं भगवान हैं, तो हमारा आचरण सुधरे बिना नहीं रहेगा, अवश्य सुधरेगा। आपने रामायण तो देखी होगी टीवी पर, उसमें राम का एक आदमी पाठ करता था, कौन था, अरुण गोविल, सबको पता है, 24 तीर्थंकरों के नाम पता हों चाहे ना पता हों, लेकिन ये सबको पता रहता है। कहते हैं कि वो अरुण गोविल पहले न मालूम क्या क्या खाता पीता था, लेकिन बाद में जब राम बना और सारी जनता रामायण के माध्यम से उसे राम के रूप में पहचानने लगी तो उसे होटल में बैठ के चाय पीना मुश्किल हो गया। यदि वो कहीं बैठकर चाय पी रहा होता तो लोग उंगलियां दिखा दिखा के कहते, देखो वो राम, देखो वो राम चाय पी रहा है। आखिरकार उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा। अरे एक व्यक्ति अपने जीवन में नकली राम बना, असली राम तो नहीं था ना, तो उसका जीवन भी सुधर गया। तो हम तो असली आत्मा राम हैं, हम तो स्वयं भगवान हैं। यदि हम ऐसा सोचेंगे कि मैं स्वयं भगवान हूं तो हमसे भी कोई हीन आचरण नहीं होगा। एक बार रावण ने मंदोदरी से कहा कि हे प्रियतमा, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कि क्यों प्राणनाथ, क्या हुआ? कि मैंने सीता को बहुत मनाया लेकिन वो मानती ही नहीं है, और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं आत्मघात कर लूंगा। कि नहीं प्राणनाथ, ऐसा क्या बात करते हो, आप आत्महत्या करेंगे तो हम विधवा हो जाएंगे ना। कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सीता के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, कोई उपाय है कि होए तो करो। कि क्या करें नाथ, आप बताओ। कि मैं क्या बताऊं, तुम समझा सकती हो तो जाओ सीता को समझाओ। और बेचारी मंदोदरी गई सीता को समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? ये समझाने के लिए गई कि तू मेरे पति को स्वीकार कर ले। कितना बढ़िया काम मिला था पटरानी मंदोदरी को। मैं माताओं बहनों से पूछता हूं कि ऐसा काम यदि आपको मिले तो आप करना स्वीकार करेंगी? कि किसी पराई औरत को जाकर ये समझाना पड़े कि वो अपने पति को छोड़कर और उसके पति को अपना ले, कोई माँ बहन ऐसा काम करने को तैयार नहीं होगी। लेकिन पटरानी को, महारानी को करना पड़ा था। कितनी सौभाग्यवती होगी वो महारानी। पूछ के देखो किसी बहन से कि बहन तुम करोगी ये काम? कि जाजा क्या बात करते हो, कोई कह के तो देखे, रोटियां बंद ना कर दी तो मेरा नाम नहीं। बेचारी मंदोदरी गई, सीता को बहुत समझाया पर सीता ना मानी, सो ना मानी, मानना ही नहीं था ना। लौट के आई के प्राणनाथ वो तो मानती नहीं है। कि नहीं मानती है कि हाँ, तो अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कि नाथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। तो मंदोदरी बोली के प्राणनाथ एक उपाय है। कि बोल बोल, जल्दी बोल, आप तो बहुरूपिया हो, सीता का अपहरण करने गए थे तब भी भेष बदल के गए थे। ऐसा करो ना कि तुम राम का वेश धारण करो और सीता के पास राम बन के जाओ, तो सीता तुम्हें स्वीकार कर लेगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एकदम उदास होकर रावण बोला कि वो तो मैं कर चुका हूं। क्या कहा? तुम राम बन के गए? कि हाँ हाँ सोचा था। फिर भी सीता ने ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, राम को तो वो कैसे ठुकरा सकती थी। तो फिर हुआ क्या, काम क्यों नहीं बना? कि जब मैंने राम का वेश बनाया तो मेरे मन में से परनारी के सेवन का भाव ही गायब हो गया। रावण जैसा पापी, दो मिनट को पाप की सिद्धि के लिए राम का वेश धारण करता है तो उसके मन में भी पाप खड़ा नहीं रह सकता है। तो हम तो रावण जैसे नहीं है, उससे बहुत अच्छे हैं ना, हम तो स्वयं भगवान आत्मा हैं। यदि हमने ऐसा विश्वास किया कि मैं स्वयं भगवान हूं तो हमारे जीवन में भी कोई पाप भाव नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सदाचार की शिक्षा देनी हो तब भी यही रास्ता है कि महावीर ने जो कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं। अब जरा देखें, वो रिक्शे वाला खड़ा है चौराहे पर, उसके चाचा ने उसे बता दिया है कि तेरे करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, और उसे पक्का विश्वास हो गया है कि जो चाचा जी कह रहे हैं वो सच्ची बात है। इतने में एक सवारी आई और उसने आवाज लगाई कि ए रिक्शे वाले, स्टेशन चलेगा? तो उसने कहा नहीं, आवाज बदल गई। पहले बोलता था नहीं बाबूजी, अब बाबूजी गायब हो गए, नहीं रह गया, वो भी जोर की आवाज में। उसने कहा भाई जल्दी चल जरा, गाड़ी चूक जाएगी, 5 रुपए की जगह 10 रुपए लेना। कह दिया है कि नहीं जाना है? अकड़ के जवाब देता है ना, क्यों? अब तो वो करोड़पति बन गया है ना, सीधे मुंह जवाब दे तो करोड़पति कैसे? बोलो तो कितने में जाएगा आज मोहनलाल जी? 100 रुपए में जाएगा? नहीं जाएगा। कितना ही पैसे दो वो सवारी को लेकर रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। तुम सवारी की बात करते हो, यदि उसे भी अब रेलवे स्टेशन जाना होगा तो वो रिक्शे से नहीं जाएगा, दूसरे के रिक्शे में बैठ के भी नहीं जाएगा। अब तो वो कोई एयर कंडीशन गाड़ी उसमें बैठ के जाएगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि सेठ जी रिक्शे से स्टेशन जा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि जब अंदर में यह विश्वास जागृत हो जाता है कि मैं करोड़पति हूं, तो फिर ऐसा हीन आचरण नहीं होता है कि रिक्शा चलाए कि पैदल जाए, उसके उसमें भी गौरव आ जाता है, हर बात में इज्जत का सवाल खड़ा हो जाता है, मेरी भी कोई क्रेडिट है ना? कल तक नहीं थी क्रेडिट, तो दूसरों को रिक्शा में ले जाता था। ऐसे ही जब हमें मानेंगे कि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, तो आत्मा की भी कोई क्रेडिट है तुम्हारी दृष्टि में कि नहीं, तो हम पर से भी कोई हल्का काम नहीं होगा। वो जो रिक्शे वाला था ना, वो रिक्शा उसके बाप का थोड़ी था, वो तो एक सेठ से किराए से लाता था, सुबह 10 रुपया रोज पर, और शाम को रिक्शा भी वापस देता था और 10 रुपये भी वापस देता था। तब दूसरे दिन जाकर सुबह उसे रिक्शा किराए पर मिलता था। जिस दिन रिक्शा जमा नहीं करा पाए, रिक्शे के पैसे ना दे पाए, तो सेठ जी घर पर आकर मोहल्ले वालों के सामने खटिया खड़ी कर देते थे, इज्जत उतार देते थे। आज वो रिक्शा अब भले ही वो स्टेशन न ले जाए, लेकिन सेठ जी को वापिस देने तो जाएगा ना, और आज के 10 रुपया देने तो जाएगा ना? नहीं जाएगा, वहीं छोड़ दिया। तो आज वो सेठ जी उसके घर वो रिक्शा लेने तो आएंगे ना, आज के 10 रुपये लेने तो आएंगे ना? नहीं आएंगे। आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन रिक्शा लेने नहीं आएंगे, 10 रुपया लेने नहीं आएंगे, बल्कि अपनी लड़की का रिश्ता लेके आएंगे, जिसके 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा है नगद, उसे कौन अपना जमाइनी बनाना चाहेगा। कहने का आशय यह है कि हमसे तो कोई हल्का काम होगा ही नहीं यदि हमें पता चल जाए कि मैं करोड़पति हूं, लेकिन दुनिया की दृष्टि में भी हमारी इज्जत बढ़ जाती है और दुनिया भी हमें इज्जत की दृष्टि से देखने लगती है। ऐसे ही जब हम स्वयं सोचेंगे कि मैं स्वयं भगवान हूं, तो हमसे तो कोई हल्का काम होगा नहीं, लेकिन जगत की दृष्टि में भी हमारी इज्जत बढ़ जाएगी और जगत भी हमें ज्ञानी धर्मात्मा मानकर, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी मानकर हमारे साथ उचित सम्मान का व्यवहार करेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी को पता ना हो कि ये रिक्शे वाला करोड़पति हो गया है और इसके करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, इसलिए उसे ए रिक्शे वाला ऐसा बोले, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये तो उस बोलने वाले के अज्ञान का दोष है जो उसे पहचानता नहीं है। ऐसे कोई अज्ञानी जीव ज्ञानी धर्मात्मा को ना पहचाने और उससे कुछ भी हल्का फुल्का कहें बात करें, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो तो नहीं पहचानने वालों का दोष है, उसमें ज्ञानी धर्मात्मा क्या करें, ज्ञानी धर्मात्मा उनकी चिंता नहीं करते। तो यानी कहने का आशय यह है कि एक बार ये श्रद्धा और प्रतीति हमारे अंदर आ जाए कि मैं स्वयं भगवान हूं, ये अंदर से बात जम जाए, तो फिर हमसे कोई भी हल्का काम नहीं होगा, हमें अपनी इज्जत का ख्याल होगा और जगत भी हमें इज्जत से व्यवहार हमसे करेगा, जिसके जगत की हम अनुकूलताएं कहते हैं वो सहज ही उपलब्ध होंगी। ये बात पक्की हो जाने पर भी कि अब वो कोई हल्का काम नहीं करेगा, रिक्शा नहीं चलाएगा, फिर भी भाई साहब कुर्ता अभी वही पुराना है, फटाफट आया यहां से जिसमें 3 ठेकरे चढ़े हैं, मकान वही पुराना है टूटा फूटा जिससे 10 साल से जिसकी मरम्मत तक नहीं हुई है, पुताई होने का तो सवाल ही क्या है। यदि वो करोड़पति हो गया है तो फिर ये मकान क्यों नहीं बदलता, ये कुर्ता क्यों नहीं बदलता? कि भाई साहब अभी वो करोड़पति सिर्फ श्रद्धा और ज्ञान में हुआ है, क्रिया में नहीं हुआ है। वे करोड़ रुपया अभी उसके हाथ में नहीं आए हैं नगद नारायण। कुर्ता श्रद्धा और ज्ञान से नहीं बदला करते हैं, मकान श्रद्धा और ज्ञान से नहीं बदला करते हैं, नगद नारायण से बदला करते हैं। ये पता चल गया ना, उससे मकान नहीं आएगा, मकान तो तब आएगा जब वो पैसा हाथ में आएगा। अभी वही दशा रहेगी। ऐसे ही कोई ज्ञानी धर्मात्मा हो गया है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी, फिर भी स्त्री पुत्र मकान जायदाद धंधा पानी लड़ाई झगड़ा इस दुनिया में जगत में देखने में आता है कि नहीं आता है? तो जगत को लगता है कि जब ये ज्ञानी धर्मात्मा हो गया है तो ये सब क्यों देखने में आना चाहिए? क्यों? क्योंकि अभी श्रद्धा में भगवान बना है, ज्ञान में भगवान बना है, अभी आचरण में क्रिया में भगवत्ता प्रकट नहीं हुई है, पर्याय में केवल ज्ञान और अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ है, अभी तो उसका विश्वास प्रकट हुआ है। अभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है जगनमल जी, केवल ज्ञान का ज्ञान हुआ है कि केवल ज्ञान कहते किसे हैं। अभी अनंत सुख नहीं हुआ है, अनंत सुख क्या चीज है अभी तो सिर्फ ये पता चला है, इसका स्वाद आया है अंश में, जब वो पूरी तरह हो जाएगा तो वो भी होगा एक दिन। आपने ताजमहल तो देखा होगा, मैंने भी देखा है। जब मैं ताजमहल देखने गया तो हम बहुत से लोग ताजमहल देख रहे थे और उस बादशाह की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा बादशाह जो अपनी बेगम को इतना प्यार करता था कि जितना प्यार आज तक किसी ने अपनी बेगम को नहीं किया होगा और ना कोई करता है और ना भविष्य में करेगा। मैंने कहा भाई साहब आपको उस बादशाह की जितनी प्रशंसा करनी हो करो, लेकिन बाकी के पत्नी प्रेमियों को गालियां देने का आपको अधिकार नहीं है। बोले मैंने किसको गाली दी? मैंने कहा आप कह रहे हो ना कि ऐसा प्यार जैसा उस बादशाह ने किया था किसी ने आज तक अपनी पत्नी से नहीं किया, ना करता है ना करेगा, आपको कैसे पता? बोले ऐसे पता है कि यदि कोई करता होता तो एक आध ताजमहल और होता, प्यार करने वाले ताजमहल बनाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ताजमहल प्यार से नहीं पैसा से बनता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक गरीब किसान अपनी पत्नी से उससे अधिक प्यार करता हो लेकिन सारी जिंदगी उसके मन का एक गहना तो बहुत दूर मन की एक साड़ी खरीद के ना दे पाए। साड़ी और गहने से प्यार का क्या लेना देना है? नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, तुम तो मुझे बताओ कि यदि और कोई ऐसा प्यार अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसने कोई एक आध ताजमहल और बनाया है कहीं? क्यों बनाए, क्यों नहीं बनाए? मैंने कहा जिसकी मर गई हो वो बनाए, जिसकी जिंदा है वो क्यों बनाए? उसकी तो पत्नी मर गई थी जब ताजमहल बनाया था, अभी हम लोगों की तो जिंदा है ना, हम क्यों बनाए? कहाँ रहने दो रहने दो। ऐसे भी बहुत से लोग हैं इस दुनिया में कि जिनकी पत्नियों का स्वर्गवास हो गया है लेकिन उनने कौन कौन से ताजमहल बना दिए हैं? क्यों? मैंने कहा भाई साहब ताजमहल प्यार से नहीं पैसा से बनता है। उस राजा के पास पैसा था, जनता का टैक्स उगाया गया था, वो जनता की सेवा में नहीं लगाकर उसने क्या किया है आखिर? मैं आपसे पूछता हूं कि यदि उसे नारियों से प्यार था, नारी जाति का उसके हृदय में सम्मान था, तो अपनी पत्नी के नाम पर उसी जमुना नदी के किनारे एक बांध बना देता तो उसके जल से आज से हमारा ये देश 400 वर्ष पहले अमेरिका जैसा हरा भरा हो जाता और पत्नी का नाम भी हो जाता मुमताज बांध। यदि वो महिलाओं की शिक्षाओं का हामी था तो अपनी पत्नी के नाम एक विश्वविद्यालय बना देता, उसका नाम रखता मुमताज विश्वविद्यालय। तो हमारी माताएं बहनें जो 20वीं शताब्दी में जाकर थोड़ी बहुत शिक्षित हुई हैं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में पढ़ लिख जाती। यदि वो बहुत धर्मात्मा था तो एक मस्जिद बना देता अपनी बेगम के नाम पर और उसका नाम रखता मुमताज मस्जिद। लेकिन ना उसने बांध बनाया, ना उसने विश्वविद्यालय खोला और ना उसने मस्जिद बनाई। बनाई तो क्या बनाई, अपनी औरत की एक कब्र, और तुम जैसे विद्वान उसकी प्रशंसा करने के लिए मिल गए। क्या किया उसने, जनता की पसीने की कमाई का टैक्स के पैसे से अपनी औरत की एक कब्र बनाई, ये कोई बड़ा काम था जो इतनी प्रशंसा के काबिल था। और ऐसे भी प्यार करने वाले हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा उस किसान के समान, एक साड़ी भी खरीद के ना दे पाए लेकिन प्यार करते हो, क्योंकि ताजमहल पैसा से बनता है प्यार से नहीं। वो बच्चे का मकान जब पैसा निकलेगा बैंक से तब बदलेगा, कुर्ते जब बदलेंगे, और ये आत्मा भी प्रकट रूप से पर्याय में केवल ज्ञानी परमात्मा जब बनेगा, जब जीवन में चारित्र प्रकट होगा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ। जब तक सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होगा तब तक कोई आत्मा भगवान नहीं बन सकता। उस बच्चे के बैंक में करोड़ों रुपया तो हैं जमा, और जब उसके हैं तो उसे मिलना ही चाहिए। और मिलना क्यों चाहिए, मिलेंगे ही। लेकिन इस हिंदुस्तान में इतने आसान भी तो नहीं है कि एक रिक्शे वाला जाए और बैंक में जाए कि मेरे 10 करोड़ रुपया जमा हैं तुम मुझे निकाल के दे दो। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं देंगे निकाल के, आखिर उन्होंने विज्ञापन निकाला है अखबार में, नहीं देना चाहते होते तो विज्ञापन क्यों निकालते। आकाशवाणी से उन्होंने अनाउंसमेंट कराया है, यदि नहीं देना होता तो आकाशवाणी से अनाउंसमेंट क्यों कराते, दे ही देंगे ना। अरे दे तो देंगे, लेकिन जाते ही कहेंगे कि तुम ही वो सुरेश हो, व्हाट इज द प्रूफ, इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम ही वो सुरेश हो। और सुरेश को ये साबित करना बहुत कठिन है कि मैं सुरेश हूं, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके बाप ने म्युनिसिपैलिटी में नाम भी नहीं लिखाया था। क्यों, और फिर हमारा इतना देश महान कि इस देश में जाए हर्षद मेहता जैसे, एक करोड़ों रुपया बैंक से निकाल के ले जाएं, जिनने कभी जमा नहीं कराए हैं लिया ही लिए हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग गरीब इन बैंक में जाके पैसा जमा कराते हैं लाइन में लगे खड़े रह करके, वे जब अपना पैसा वापस लेने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रूफ, हर्षद मेहता से किसी ने नहीं पूछा। क्यों, तो अभी भाई इतना आसान तो नहीं है। ऐसे ही तुमने कह दिया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया है तो सम्यक चारित्र भी हो ही जाएगा। हम कब कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन भाई साहब इतना आसान भी नहीं है। कम से कम जितना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जितना आसान तो नहीं है, ये भी आसान तो नहीं है, लेकिन वो तो और महादुर्लभ काम है। लेकिन एक बात जब पता चल गया है तो पैसा मिलेगा, मिलेगा और अवश्य मिलेगा, कितनी ही मुश्किल से मिले लेकिन मिलेगा। ऐसे ही एक बार हमें पता चल गया है कि हमें स्वयं भगवान हूं, ये ज्ञान हो गया है, सिद्धांत हो गया है, तो एक दिन चारित्र भी होगा और हम पर्याय में भगवान भी अवश्य बनेंगे। लेकिन वो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसकी चर्चा कल। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।